पनियम संख्या 21।
महिमामय देश में रविवार विधान की ओर अग्रसर आंदोलन।
दानियल 11 के पद 16 से 22 तक का इतिहास रविवार के कानून के एक प्रतिरूप से आरंभ होता है और उसी पर समाप्त भी होता है। रेखा का आरंभ और समापन एक ही होने से मसीह के हस्ताक्षर अर्थात अल्फा और ओमेगा की पहचान होती है। भविष्य सूचक दृष्टि से पद 16 को पद 22 के साथ संरेखित करना आवश्यक है। ऐसा करने पर मक्कबियों की रेखा द्वारा निरूपित महिमामय देश का इतिहास पद 10 से 15 तक के इतिहास में स्थानांतरित हो जाता है।
मक्काबियों।
मक्काबी विद्रोह उन 22 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जो 1776 में प्रारंभ हुए और 1798 में तब समाप्त हुए जब संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबल की भविष्यवाणी में छठा राज्य बना। यह 1798 में अंत के समय से प्रत्यक्षतः संबद्ध एक इतिहास के रूप में संख्या 22 की पहचान करता है और वहीं से दानियल 11 का 40वां पद आरंभ होता है। संख्या 22 का 70 हतात के साथ संबंध पहचानना महत्वपूर्ण है। मक्काबियों का विद्रोह अमेरिकी क्रांति का प्रतिरूप ठहरते हुए महिमामय देश की दोनों क्रांतियों शाब्दिक और आध्यात्मिक को ऐसे विद्रोहों के रूप में समरूप ठहराता है जिन्होंने सेल्यूकिडों और यूरोपीय राजाओं की राज्य शासन व्यवस्था के साथ साथ यूनान और रोम की कलीसियाई व्यवस्था को भी अस्वीकार किया। दोनों ऐतिहासिक साक्ष्यों में यूनान और रोम उत्तर के राजा का प्रतिनिधित्व करते थे। मक्काबी रेखा का निरूपण पद 23 में है, परंतु ये उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है जो पद 15 के पानियम के 33 वर्ष बाद और पद 16 के पोम्पियस से 100 वर्ष से कुछ अधिक पहले आरंभ हुआ। ये रेखा क्रूस के न्याय पर समाप्त होती है। ये ऐसा न्याय था जो 70 ईस्वी तक विस्तारित रहा, यद्यपि उस न्यायकाल को पद 22 में मात्र क्रूस कहकर अभिहित किया गया है। भविष्यवाणी की दृष्टि से मक्काबी रेखा जो 1776 से महिमामय देश का प्रतिनिधित्व करती है, फिर 1798 में हसमोनी वंश और तत्पश्चात हेरोदियन वंश के द्वारा क्रूज और 70 ईस्वी तक पद 22 पर समाप्त होती है और इसका आरंभ 1776 से 1798 तक के 22 वर्षों से होता है। 1776 से 1798 तक के 22 वर्ष 911 से 2023 तक के 22 वर्षों का भी प्रतिरूप है, जिसका प्रतिरूप दानियल के 10वें अध्याय में 22 दिनों के रूप में किया गया था। मक्काबी रेखा 22 से आरंभ होती है और 22 पर ही समाप्त होती है।
चार रोमी शासक।
पद 16 से 22 तक प्रत्यक्ष रूप से चार रोमी शासकों की पहचान करते हैं और उन्हीं पदों के भीतर एक अन्य रेखा का निरूपण करते हैं। दोहराना और विस्तार करना के सिद्धांत के अनुसार मक्काबी रेखा समन्वित है और रोमी रेखा का पदों में प्रत्यक्ष निरूपण है। पोम्पेय ने 3 बाधाओं में से पहली 2 को परास्त किया और 31 ईसा पूर्व एक्टियम के युद्ध में रोम बाइबल की भविष्यवाणी के 4थे राज्य के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके बाद जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर और टिबेरियस सीजर आए। पोम्पेय एक सेनापति था और अंतिम 3 प्रतीक सम्राटों के रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं। 4 शासकों में से अंतिम की मृत्यु पद 22 में होती है, जहां मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसलिए हमें रोम के 4 शासकों में से अंतिम को पद 16 के रविवार के कानून तक वापस ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर पोम्पेय 4 मार्ग चिन्हों में प्रथम का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां 4था और अंतिम मार्ग चिन्ह कहेंगे कि जो बताए साथ संरेखित होता है। पद 16 का प्रतिनिधित्व टिबेरियस सीजर करेगा और पद 15 के पैनियम के युद्ध का प्रतिनिधित्व ऑगस्टस सीजर करेगा। पद 11 में राफिया के युद्ध का प्रतिनिधित्व जूलियस सीजर करेगा और इस प्रकार जनरल पोम्पेय पद 10 तथा 189 के रूप में चिह्नित होता है। ये इंगित करता है कि दानियल अध्याय 11 के 40वें पद का छिपा हुआ इतिहास 1979 में सोवियत संघ के पतन से लेकर पद 41 में उल्लिखित रविवार का विधान तक का इतिहास 3 भविष्यवाणी रेखाओं द्वारा निरूपित है जो पद 10 से 23 में प्रस्तुत इतिहास में पाई जाती हैं। मक्काबियों, रोमी शासकों और रोम की प्रतिनिधि शक्तियों के 3 युद्ध।
मैं तुम्हारे पास तीसरी बार आ रहा हूँ। हर बात की पुष्टि दो या तीन गवाहों से होगी। 2 कुरिन्थियों 13:12।
3 प्रतिनिधि युद्ध।
पद 10:4-1720 से 1720 ईसा पूर्व तक घटित हुए चतुर्थ सीरियाई युद्ध के अंत को चिन्हित करता है, जब अंतियोकस तृतीय मैग्नस महान पद 11 के युद्ध से पूर्व पुनः संगठित हुआ। वो राफिया का युद्ध था जिसका प्रतिनिधित्व जूलियस सीजर करेगा। पद 10:1900 ने में सोवियत संघ के पतन की पहचान करता है, जैसा कि पद 40 में निरूपित है, और पोम्पेया उस इतिहास के साथ संरेखित होता है। पद 16 यहूदा के महिमा में देश की विजय को निरूपित करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून का प्रतिरूप है, परंतु पोम्पेया 1999 के साथ भी संरेखित होता है, और 1999 में आधुनिक रोम ने अपनी पहली बाधा पर विजय पाई, पर ऐसा करते समय उसने रोनाल्ड रीगन को महिमा में देश के साथ एक गुप्त गठबंधन करने के लिए लुभाकर एक ही साथ प्रोटेस्टेंट अमेरिका को आत्मिक रूप से विजित कर लिया। रोम की व्यभिचारिणी के साथ किसी राजा का गठबंधन आत्मिक व्यभिचार का प्रतिनिधित्व करता है। 1985 वह समय था जब रोम की व्यभिचारिणी अपने 70 वर्षों से बाहर निकलना आरंभ करती है, ताकि वो पृथ्वी के समस्त राजाओं के साथ व्यभिचार करे। पहला राजा 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रतिनिधित्व अहाब करता है, जो ईजीबेल से विवाहित था, जो यशाया के 23वें अध्याय में सूर की व्यभिचारिणी है।
और उस दिन ऐसा होगा कि सोर 70 वर्ष तक बुला दिया जाएगा। एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष के अंत में सोर वेश्या के समान गाने लगेगा। हे भुलाई हुई वेश्या, वीणा उठा, नगर में घूम, मधुर राग छेड़, बहुत से गीत गा, ताकि तुझे फिर स्मरण किया जाए। और 70 वर्ष के अंत के बाद ऐसा होगा कि यहोवा सोर की सुधि लेगा, और वो फिर अपनी मजदूरी पर लौटेगी और पृथ्वी के ऊपर के समस्त राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी। यशाया 23:15-17।
व्यभिचारिणी सत्ता अध्यात्म में अंत के समय पर विस्मृत हो गई, जब उसे उसका घातक घाव लगा, जैसा दानियल 11:40 में दर्शाया गया है। 1929 में अंत के समय पर वह उस राज्य के साथ व्यभिचार करके, जो उसके अधिकार के चिन्ह को लागू करने वाला प्रथम राज्य होगा, अपने घातक घाव की चंगाई की अवधि का आरंभ करती है। उस राज्य का प्रतिनिधित्व अहाब द्वारा और फ्रांस द्वारा किया गया था, जिसने 513 में पापसी को पृथ्वी के सिंहासन पर बिठाया और पापसी शक्ति के उदय का समर्थन करने वाला अग्रणी राज्य रहा। इसी कारण उन्हें कैथोलिक कलीसिया का पहलौठा तथा कैथोलिक कलीसिया की ज्येष्ठ पुत्री की उपाधियां दी गई हैं। फ्रांस और अहाब दोनों 1929 से लेकर रविवार के विधान तक संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की गवाही देते हैं। यशाया अध्याय 23 में सूर की वेश्या का वर्णन है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 की वही वेश्या भी है जिसके माथे पर बाबुल महान लिखा है। ये संयुक्त राज्य के इतिहास के संदर्भ में 1798 से भुलाई जाती है, जब पाप सत्ता बाइबिलीय भविष्यवाणी का 5वां राज्य प्रकाशित वाक्य 13 का समुद्र से उठने वाला पशु राना बंद कर देती है। तब संयुक्त राज्य ने बाइबिलीय भविष्यवाणी के 6ठे राज्य के रूप में प्रकाशित वाक्य 13 के पृथ्वी से उठने वाले पशु के रूप में अपनी भूमिका आरंभ की। अंततः संयुक्त राज्य प्रकाशित वाक्य 17 के 10 राजाओं में प्रधान राजा बन जाता है। 70 वर्षों एक राजा के दिन की अवधि का सांकेतिक इतिहास उन 70 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें बाबुल ने बाइबिलीय भविष्यवाणी के प्रथम राज्य के रूप में शासन किया। ये 1798 से लेकर रविवार के कानून तक संयुक्त राज्य के इतिहास का प्रतिरूप ठहरता है, जहां अमेरिकी इतिहास की बाह्य रेखा का प्रतिनिधित्व गणतांत्रिक सींग करता है और आंतरिक रेखा का प्रतिनिधित्व प्रोटेस्टेंट सींग करता है। ये दोनों सींग संविधान के उस हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्य और कलीसिया के पृथककरण का प्रावधान करता है, और यही अमेरिका के भविष्य सजेत का विषय है। टायर की वेश्या को भुला दिए जाने के लिए 70 वर्ष ठहराए गए हैं। तत्पश्चात 1989 में अंत के समय से लेकर रविवार के कानून तक वो गाने लगती है। उसने एक गुप्त गठबंधन से आरंभ किया। जब उसने प्रोटेस्टेंट अमेरिका के धर्म को अपने अधीन कर लिया और सोवियत संघ के पतन के साथ दक्षिण के राजा की राजनीतिक संरचना को ध्वस्त कर दिया, 70 वर्षों की एक अवधि जो उस इतिहास में पूर्ण होती है जहां महान अंतियोकस 17 वर्षीय अव्यवहे के मध्य में खड़ा है। वह अवधि 10 और 7 में विभाजित है, जिन्हें परस्पर गुणा करने पर 70 होता है। राफिया और पानियम के मध्य समाप्त होने वाले बाह्य 250 वर्षों के आरंभ में आंतरिक 2300 वर्षों की समय भविष्यवाणी आरंभ होती है, जिसमें 70 सप्ताह दानियल की प्रजा पर ठहराए जाते हैं। उन 70 सप्ताहों के अंत में 34 ईस्वी में प्राचीन इसराइल उसके चुने हुए वाचाजन के रूप में परमेश्वर से सदा के लिए विवाह संबंध से विच्छेदित कर दिया गया, और तब परमेश्वर ने अपनी मसीह दुल्हन के साथ विवाह किया और अन्य जातियों की ओर हाथ बढ़ाया। 384 ईसा पूर्व एंटियोकस 70 के मध्य में खड़ा है, जो उसके राज्य के अनुग्रहित राष्ट्र के रूप में दर्जे के समापन की पहचान करता है, उस महिमामय भूमि के रूप में जहां उसने आधुनिक इसराइल को उठाने के लिए चुना। रविवार के कानून पर 6ठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत यशाया के 70 वर्षों का अंत है। एंटियोकस की 250 वर्षों की काल रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के गणतंत्री असींग के लिए अनुग्रह काल के समापन की पहचान कराती है। पद 16 के रविवार के कानून से ठीक पहले वे 2300 वर्षोड़ा का, जो 22 अक्टूबर 1884 को न्याय के आरंभ के साथ समाप्त हुए, इस बात का प्रतिरूप ठहरते हैं कि न्याय रविवार के कानून पर कब समाप्त होगा। वे 2300 वर्ष 70 सप्ताहों से आरंभ होते हैं, जो शाब्दिक इसराइल के परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में अंत की पहचान कराते हैं। 2300 वर्षों की समग्र अवधि का अंत इस प्रकार निष्कर्षित होता है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन समाप्त हो जाता है, जबकि आगमन आंदोलन रविवार के कानून तक चलता रहता है। जब 1844 का बंद दरवाज़ा पुनरावृत्त होगा, तब द्वार गणतंत्रीय सींग, प्रोटेस्टेंट सींग और शासन पशु पर बंद हो जाएंगे। अंतियोकस का 10 और 7 की अवधियों के बीच खड़ा होना उसके परिवीक्षा काल के अंत पर खड़ा होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, जो पृथ्वी से निकलने वाला पशु है, के लिए परिवीक्षा काल रविवार के कानून के समय समाप्त होता है, परंतु गणतंत्रीय सींग का परिवीक्षा काल रविवार के कानून से पूर्व ही समाप्त हो जाता है।
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 70 × 7 बार तक। मत्ती 18:22।
70 बार 7 का प्रयोग बाइबल में संख्याओं को इस प्रकार गुणक के साथ व्यक्त करने का एकमात्र उदाहरण है। 70 बार 7 वे 490 वर्ष है जो दानियल की प्रजा के लिए ठहराए गए थे। ये वही 70 सप्ताह है जो 2300 का आरंभ करते हैं, और उसी आरंभ बिंदु से 250 वर्षों के अंत में अंतियुखुस 10 और 7 के मध्य में आ पहुंचता है। वही अंतियुखुस महान अपनी कथा के अंतिम अंकों में महान विवाद के पवित्र नाटक में अपना स्थान ग्रहण करता है। 154 का बंद द्वार रविवार के कानून के बंद द्वार का प्रतीक है, और 16वें पद के रविवार के कानून से पहले अंतियोकस द्वारा अपने राज्य के अंत को चिह्नित करते हुए 7 वर्षों की एक अवधि आरंभ होती है, और फिर उन 7 वर्षों के समापन पर उसका राज्य समाप्त हो जाता है। ये 7 वर्षीय अवधि पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल का प्रतिनिधित्व करती है, और यह अवधि सन 321 में प्रथम रविवार के कानून से आरंभ होती है। उस प्रथम रविवार के कानून से पहले, जो अंतिम रविवार के कानून का प्रतिरूप है, एक 10 वर्षीय अवधि है जो एक फरमान से आरंभ होती है। सन 313 के फरमान पर 10 वर्षों द्वारा निरूपित परीक्षण आरंभ होता है। तब अंतियोकस प्रथम रविवार का कानून पारित करता है और गणतांत्रिक सींग का अनुग्रह काल समाप्त हो जाता है। 7 वर्षों के अंत में पानियम और रविवार का कानून आ पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सन 330 में पूर्व और पश्चिम का विभाजन होता है।
पोम्पेय
ने पद 16 में महिमामय भूमि को विजित किया, परंतु 65 से 63 ईसा पूर्व तक के 2 वर्षीय काल के भीतर दानियल अध्याय 8:9 की पूर्ति में पोम्पेय ने वास्तव में पूर्व और महिमामय भूमि दोनों को विजित किया, जो पद 40 और 1999 में होने वाली द्विविजय का प्रतिरूप ठहरता है। मूर्ति पूजक रोम के लिए तीसरी बाधा का निवारण ऑगस्टस सीजर द्वारा किया जाएगा, जो प्रथम आधिकारिक रोमी ट्रायोमविरेट का गठन करने के लिए विख्यात है, जो रोम में प्रथम आधिकारिक त्रिविध संघ का प्रतिनिधित्व करता है। रोमी शासकों के तीसरे मार्ग चिन्ह पर रोमी इतिहास में इस त्रिविध संघ को आधिकारिक रूप से चिह्नित किया जाता है। पद 16 में रविवार के विधान पर अजगर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का त्रिविध संघ स्थापित होता है, और तब जकरयाह के प्रतिपादन के अनुसार दुष्टता का पक्षी शिनार में अपने स्थान पर फिर से बैठा दिया जाता है। ऑगस्टस सीजर ने पहला आधिकारिक रोमी ट्रायम्विरेट गठित किया, पर इतिहासकार उसे द्वितीय ट्रायम्विरेट कहते हैं, क्योंकि जूलियस सीजर ने भी एक ट्रायम्विरेट बनाया था, पर वो रोमी शासन का आधिकारिक ट्रायम्विरेट नहीं था। शीघ्र आने वाले रविवार विधान के समय अजगर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के त्रिविध संघ के प्रतीकों के रूप में जूलियस और ऑगस्टस सीजर का संबंध रविवार विधान को लागू कराने के आंदोलन के आरंभ ने जूलियस और उसके अंत में ऑगस्टस द्वारा प्रतिरूपित है। ये भविष्य सूचक संबंध ईसवी सन 1600 में सेस्टियस की घेराबंदी द्वारा भी अभिव्यक्त है, जिसके पश्चात तीतुस की घेराबंदी हुई। जूलियस सिस्टियस के समान है और ऑगस्टस तीतुस के समान। जूलियस और ऑगस्टस त्रिविध संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और सिस्टियस तथा तीतुस घेराबंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भविष्यवाणी की दृष्टि से रविवार के कानून के लिए आंदोलन का आरंभ सन 313 में मिलान के फरमान के साथ होता है। फिर सन 320 में 17 वर्षीय कालावधि के मध्य बिंदु पर प्रथम रविवार का कानून जारी किया जाता है। राज्य के पूर्व और पश्चिम में विभाजन का तृतीय चरण, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उन लोगों के बीच होने वाले विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है जो पशु का चिन्ह अथवा परमेश्वर की मुहर ग्रहण करते हैं और जो नहीं करते, सन 333 था। रविवार के कानूनों की एक श्रृंखला है जो एक रविवार के कानून तक ले जाती है, और सन 320 उस प्रथम रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है जो सन 333 के अंतिम रविवार के कानून तक ले जाता है। अंटियुकुस के 250 वर्षों से भिन्न नीरो के 250 वर्ष 8 वर्षों की एक अवधि की पहचान कराते हैं, जिसका मध्य बिंदु प्रथम रविवार का कानून है और तत्पश्चात 9 वर्षों की रेखा पर रेखा। अंटियुकुस और नीरो तीन मार्ग चिह्नों द्वारा निरूपित दो अवधियों की पहचान कराते हैं। दोनों रेखाओं में प्रथम और अंतिम मार्ग चिह्न समान हैं। आरंभ में एक अधिदेश, जो एक ऐसे विवाह से चिह्नित था जो तलाक पर समाप्त हुआ, और आरंभ तथा समापन दोनों पर उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बीच युद्ध। मध्य में सन 321 का प्रथम रविवार का कानून वही बिंदु होना चाहिए जहां अंटियुकुस खड़ा है। वो उन 10 वर्षों द्वारा निरूपित एक परीक्षात्मक प्रक्रिया के समापन पर खड़ा है, और वही परीक्षात्मक प्रक्रिया अंटियुकुस को 7 में से निकला हुआ 8वां रूप में प्रकट करती है, क्योंकि वो उस पशु की प्रतिमा गढ़ता है जो 7 में से ही 8वां है। इसी समय 144,000 भी एक परीक्षात्मक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और 7वीं लाओदीकियन कलीसिया से 8वीं अर्थात फिलाडेल्फियन कलीसिया में रूपांतरित होते हैं। प्रथम रविवार के कानून पर प्रतिमा की स्थापना आरंभ होती है और प्रकाशित वाक्य 13 पद 11 के रविवार के कानून पर समाप्त होती है। वह पद जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आरंभ को मेमने के समान तथा उसके अंत को अजगर के समान परस्पर विरोध में रखता है, 13 विद्रोह का प्रतीक है, और पद 11 के संदर्भ में यही विद्रोह का प्रतीक अर्थात समृद्ध राज्य अमेरिका का अजगर के समान बोलना पशु का चिन्ह है, जबकि जिनके पास परमेश्वर की मोर है उनका प्रतीक संख्या 11 है। प्रकाशित वाक्य 13:11 उस विभाजन को चिन्हित करता है जो रविवार के कानून के समय, जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलता है, उन लोगों के बीच होता है जो या तो पशु का चिन्ह या परमेश्वर की मोर ग्रहण करते हैं। पशु की प्रतिमा का परीक्षा काल ऐसे विशिष्ट चिन्ह रखता है जो उसके आगमन को चिन्हित करते हैं और साथ ही उसके अंत का भी पूर्व रूप दर्शाते हैं। नूह से लेकर तुरहियों के पर्व तक परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। वह सदैव परीक्षा काल को उसके आगमन से पूर्व अग्रिम रूप से घोषित करता है। उसकी ये घोषणाएं उसके भविष्यवाणी के वचन में मिलती हैं। अधिकांश एडवेंटिस्ट, मेरा अनुमान है, ये नहीं जानते कि यरूशलेम के विनाश में दो घेराबंदियां हुई थीं, या कि अंतिम विनाश का दिन वर्ष के ठीक उसी दिन पड़ा जिस दिन नबूकदनेस्सर ने पहली अल्फा बार यरूशलेम और मंदिर का विनाश किया था। वे ये भी नहीं जानते होंगे कि घेराबंदियां पवित्र पर्वों पर प्रारंभ हुईं और एक पवित्र पर्व पर समाप्त हुईं, या कि घेराबंदी का काल 3.5 वर्ष का था। यदि वे इन तथ्यों को नहीं जानते तो ये संभावना कम है कि वे ये देख पाएंगे कि जूलियस सीजर पशु की प्रतिमा की परीक्षा काल के उसके सर्वाधिक परिपूर्ण निरूपण में आरंभ को चिह्नित करता है। सर्वाधिक परिपूर्ण निरूपण से मेरा तात्पर्य उसकी अंतिम पूर्ति से है। वही काल 2873 से लेकर रविवार के कानून तक और फिर 9 वहदी से लेकर रविवार के कानून तक भी प्रतिनिधित्व किया गया है, परंतु 313.33333 के काल में कॉन्स्टेंटाइन महान द्वारा निरूपित पशु की मूर्ति की स्थापना के उस भविष्यद्वाणी काल की परिपूर्ण पूर्ति 1989 में अंत का समय आरंभ होने के बाद से गिने गए 8वें राष्ट्रपति के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में प्रारंभ होती है। पहले रविवार के कानून से सप्त और रविवार के संबंध में परीक्षण काल उस अवधि में उद्घाटित होता है जो अंतियोकुस के 7 वर्षों द्वारा प्रतीकित है। अंतियोकुस की रेखा के 7 वर्षों को नीरो की रेखा के 9 वर्षों से गुणा करने पर 63 होते हैं और 63 ईसा पूर्व में पोम्पेय ने महिमाय देश को विजित किया, दानियल 11:16 की पूर्ति में। रविवार के कानून के समय 9 राजा संयुक्त राज्य को उन 10 राजाओं का प्रधान राजा स्वीकार करेंगे जो अपने राज्य को सूर की वेश्या को देने पर सहमत होंगे, जो तत्पश्चात पृथ्वी के सब राजाओं के साथ व्यभिचार करेगी। 10 कुवारियों के 10 नमथांत की भविष्यद्वाणी गत संरचना के अनुरूप पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का विवाह 1979 में आसपन हुआ, परंतु रविवार के कानून पर उस विवाह की परिपूर्णता होती है। उस इतिहास का एक फ्रैक्टल वो काल है जो जीवितों के न्याय का काल है, जो 2001 में 9:12 आरंभ हुआ। उस बिंदु से लेकर रविवार के कानून तक पशु की प्रतिमा परीक्षण का समय चलता है, जो कि 1,44,000 पर मुहर लगाए जाने का समय भी है, और उसी में परमेश्वर की वाचा की प्रजा पर तथा उस देश पर जहां वे अब्राहम की वाचा की भविष्यद्वाणी की पूर्ति में निवास करते रहे हैं न्याय संपन्न किया जाता है। उसी अवधि में लाओदिकियन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का न्याय होता है और तब वे भी न्याय के अधीन लाए जाते हैं जो अपने को कुआरिया होने का दावा करते हैं। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट सींग का न्याय होता है और ये उस अवधि में होता है जिसमें पहले रिपब्लिकन सींग की डेमोक्रेटिक पार्टी का न्याय हुआ और 2024 में पहुंचकर अब रिपब्लिकन सींग के रिपब्लिकनों का न्याय घटित हो रहा है। संवैधानिक सरकार वो पशु है जो 2 सींगों को वहन करती है और रविवार के कानून पर उसका न्याय किया जाता है। 1984 से संडे लॉ तक का कालखंड जूहे 12 से संडे लॉ तक के एक फ्रैक्टो में निरूपित है, परंतु पशु की मूर्ति की स्थापना की परिपूर्ण पूर्ति 7 में से होने वाले 8वें राष्ट्रपति में होती है। नीरो के 17 वर्ष 9:12 से संडे लॉ तक के इतिहास का एक फ्रैक्टल है। अंतियोकुस के 17 वर्ष भी ऐसे ही है। रीगन का विवाह तथा गुप्त गठबंधन 8वें राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक खुले गठबंधन के साथ अपनी परिणति को पहुंचता है। अल्फा और ओमेगा विवाहों में से प्रथम का प्रतीकीकरण 2001 में पैट्रियट अधिनियम द्वारा हुआ, जब अंग्रेजी विधि को रोमन विधि में परिवर्तित किया गया। मिलान के आज्ञा पत्र का विवाह पशु की मूर्ति की स्थापना की परिपूर्ण पूर्ति के प्रारंभ को चिह्नित करता है। उस विवाह की संरचना 10 कुंवारियों के विवाह की संरचना पर आधारित है और वो सच्चे विवाह के दौरान घटित होने वाले मिथ्या विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। पशु की प्रतिमा का परीक्षण काल उस परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमारे मुहर बंद होने से पहले हमें उत्तीर्ण करना है। परमेश्वर के घर का न्याय पहले होता है और फिर रविवार के कानून पर जो परमेश्वर के घर से बाहर है उनका न्याय किया जाता है। अंतिम न्याय की अवधि पहले परमेश्वर के घर में और फिर महान जनसमूह में प्रथम रविवार के कानून से आरंभ होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पहला रविवार का कानून होगा जो पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल की पूर्ण और अंतिम परिपूर्ति की शुरुआत को चिह्नित करेगा। ये परीक्षण काल तत्पश्चात उस रविवार के कानून पर समाप्त होगा जो प्रकाशित वाक्य 13:11 की पूर्ति करता है। वो रविवार का कानून महिमामय देश में अंतिम रविवार का कानून है। महिमामय देश में अंतिम रविवार का कानून ही संसार में पहला रविवार का कानून है जो संसार के लिए पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल को चिह्नित करता है। संसार का परीक्षण काल 13:11 पद में वर्णित संयुक्त राज्य अमेरिका के रविवार के कानून पर आरंभ होता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर अजगर के समान बोलेगा तब उस अध्याय के 12 पद से आगे के पद संसार के लिए पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण नीरो की वो 250 वर्षीय भविष्यवाणी जो 3 सेत्र के फरमान से आरंभ होने वाले 17 वर्षों के साथ समाप्त होती है जिनमें 321 का पहला रविवार कानून और 330 में पूर्व तथा पश्चिम का विभाजन सम्मिलित है देखना महत्वपूर्ण है। नीरो की रेखा के 3 चरण उत्पीड़न के विषय में है। नीरो उत्पीड़न का प्रतीक है और 250 वर्षों का काल स्मिरना की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है जो 300 तित्र में तब समाप्त हुआ जब समझौते की कलीसिया आई। 3रा चरण एक राज्य के अंत को चिह्नित करता है। अतः जब इसे संयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू किया जाता है तो ये रविवार कानून तथा 6ठे राज्य से 7वें और 8वें राज्यों में संक्रमण का द्योतक है। जब इसे विश्व पर लागू किया जाता है तो 3रा मार्गचिन्ह मानवीय अनुग्रह काल का समापन है जिसका प्रतिरूप विश्व में पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल के आरंभ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अनुग्रह काल के समापन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण ऑगस्टस सीजर रविवार के विधान तक ले जाने वाले 4 रोमी शासकों में से 3रा। ये विधान जैसा कि पद 22 में प्रतिपादित है क्रूज द्वारा निरूपित है। क्रूज का प्रतिनिधित्व कर सकता है यद्यपि उसके बाद टिबेरियास आता है जो भी क्रूज का प्रतिनिधित्व करता है। पशु की प्रतिमा के परीक्षण का काल दोहरी परीक्षा है जो पहले पृथ्वी की और फिर समुद्र की परीक्षा करता है। पृथ्वी से तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका से है और समुद्र से तात्पर्य समस्त संसार से है। पशु की प्रतिमा की परीक्षा चिन्हों का द्विगुणन उत्पन्न करती है जहां द्वितीय काल का अल्फा प्रथम काल का ओमेगा भी है। 322 भविष्य सूचक इतिहास का प्रथम रविवार कानून था और उन 17 वर्षों में जो पशु की प्रतिमा के परीक्षा काल की पहचान कराते हैं 322 सन युक्त राज्य में प्रथम रविवार कानून है जो महिमामय देश में पशु की प्रतिमा के परीक्षा काल के ओमेगा रविवार कानून तक ले जाता है। तथापि 322 संत्य के लिए भी प्रथम रविवार कानून है। अतः 322 वर्ष पशु की प्रतिमा के परीक्षा काल के आरंभ तथा उसके समापन दोनों का मध्य बिंदु चिह्नित करता है। 313 और आरंभ एक फरमान है जो रविवार कानून का प्रतिरूप है। नीरो के 17 वर्ष मानवीय परख काल के समापन तक क्रमशः बढ़ते हुए रविवार कानूनों के एक कालखंड की पहचान कराते हैं। अध्यादेश उस प्रथम रविवार विधान का प्रतिरूप है जो अनुग्रह काल की समाप्ति तक ले जाता है। पद 16 में पोम्पेया ने यहूदा को अपने अधीन कर लिया जो रविवार विधान का प्रतिरूप ठहरता है और जूलियस सीजर ने प्रथम ट्रायम्विरेट का गठन किया। यद्यपि वो एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय संघ था तथापि इतिहासकार उसे प्रथम ही मानते हैं। रविवार विधान के त्रिपक्षीय संघ का जूलियस सीजर का प्रतिरूप ऑगस्टस सीजर के आधिकारिक ट्रायम्विरेट का भी प्रतिरूप ठहरा जिसके पश्चात क्रूस के समय टिबेरियस आया। 4 रोमी शासक रविवार विधान का प्रतिरूप है जैसे कि नीरो के 17 वर्षों के 3ों चरण भी उसी के प्रतिरूप है। पोम्पेया 1989 के साथ मेल खाता है। जूलियस पद 11 के साथ मेल खाता है। ऑगस्टस पद 15 के साथ मेल खाता है और टाइबेरियस पद 16 के साथ। पदों में जूलियस की कथा में उसका मिस्र में प्रवेश और क्लियोपात्रा सम्मिलित है। ये इतिहास मार्क अंतनी द्वारा पुनः दोहराया जाता है। मार्क अंतनी उस समय जूलियस सीजर का मुख्य सेनापति था जब जूलियस की 23 छुराघातों से हत्या कर दी गई थी। 23 रविवार व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और 23 घावों द्वारा जूलियस की मृत्यु रविवार व्यवस्था पर समाप्त होने वाले एक राज्य को दर्शाती है। तब मार्क अंतनी, ऑगस्टस सीजर और मार्कस लेपिडस ने उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए प्रथम आधिकारिक त्रिमूर विराट का गठन किया। उन तीन गुणी शक्तियों में से एक मार्क अंतनी मिस्र और क्लियोपात्रा के साथ जूलियस की मुठभेड़ को दोहराने वाला था। चाहे जूलियस हो या मार्क एंटनी, वे दोनों ही रोम के प्रतीक हैं और क्लियोपेट्रा मिस्र तथा यूनान का प्रतीक थी। वो मिस्र में यूनानी शासन का प्रतिनिधित्व करती थी। दोनों ही अजगर के प्रतीक हैं, जबकि जूलियस और मार्क एंटनी पशु के प्रतीक हैं। संबंध में स्त्री होने के नाते क्लियोपेट्रा कलीसिया थी, जिससे जूलियस और मार्क एंटनी राज्य ठहरते हैं। क्लियोपेट्रा ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने राजसी रोमी प्रेमियों से दो बार पृथक की जाती है। पहली बार 1900 में और फिर अनुग्रह अवधि के समापन पर, जब वो सहायता करने वाले किसी के बिना अपने अंत को पहुंचती है। उसका अंतिम विनाश 31 ईसा पूर्व में एक्टियम के युद्ध में होता है। एक्टियम के युद्ध का विजेता ऑगस्टस कैसर था, अतः हम पाते हैं कि पोम्पी मिस्र में मरा। जूलियस का क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र में सामना हुआ, जो मार्क एंटनी के इतिहास में दोहराया गया, और फिर ऑगस्टस कैसर एक्टियम में उस संबंध का अंत कर देता है। एक्टियम रविवार के विधान की पहचान कराता है, क्योंकि एक्टियम के युद्ध में रोम के लिए तीसरी बाधा दूर की गई और साम्राज्यवादी मूर्तिपूजक रोम ने दानियल 11:24 की पूर्ति में 360 वर्षों तक शासन करना आरंभ किया। पहली दो बाधाएं पोम्पेया ने पार की और तीसरी ऑगस्टस ने,
और उनमें से एक छोटा सा सींग निकला जो दक्षिण की ओर, पूर्वी की ओर और शोभायमान देश की ओर अत्यंत बड़ा होता गया। दानियल 8:9।
पोम्पेया 1985 है उन तीन राजनीतिक शक्तियों में पहला मार्गजन, जिन्हें आधुनिक रोम अपने घातक घाव के भरने के साथ परास्त करेगा, सोवियत संघ, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, और दानियल 11 के 41वें पद में संयुक्त राष्ट्र। पापाई सत्ता का संघर्ष राजनीतिक और धार्मिक दोनों है, और भविष्यवाणी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की धार्मिक सत्ता उस समय वशीभूत हुई जब रीगन और पोप जॉन पॉल द्वितीय की गुप्त संधि संपन्न हुई। पापाई सत्ता के लक्ष्य में तीन राजनीतिक अवरोधों और तीन धार्मिक शक्तियां सम्मिलित हैं। 1989 में उन तीन राजनीतिक शक्तियों में से एक बहा दी गई। उसी इतिहास में प्रोटेस्टेंटवाद, जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही रोम के विरुद्ध विरोध करना है, को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहा दिया। तीन राजनीतिक शक्तियां सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र है, और धार्मिक लक्ष्य है प्रोटेस्टेंटवाद तथा अजगर के विविध धर्म, जिन्हें सभी आत्मवाद माना जाता है। वे तीन धर्म जो संसार को अर्मगिद्दोन तक ले जाते हैं, धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद, कैथोलिकवाद और आत्मवाद हैं, और पापाई सत्ता के अपनी कलीसिया के भीतर रूढ़िवादी और उदारवादी विचारधाराओं के बीच के आंतरिक संघर्ष, साथ ही ऑर्थोडॉक्स कैथोलिकवाद के विभाजन एक धार्मिक अवरोध प्रस्तुत करते हैं। कैथोलिकवाद के द्वारा विजित किए जाने हेतु अन्य दो धार्मिक अवरोध धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद और आत्मवाद है। प्रोटेस्टेंटवाद 1985 में बहा दिया गया। यदि फातिमा के संदेशों से व्युत्पन्न विविध कैथोलिक भविष्यवाणियों में निरूपित कैथोलिक कलीसिया के आंतरिक संघर्षों को उसके अपने धर्म के बाहर स्थित धार्मिक शक्तियों पर विजय पाने के उसके प्रयासों से पृथक कर देखा जाए, तो प्रोटेस्टेंटवाद पर उसकी अल्फा विजय रीगन के साथ उसका गुप्त गठबंधन थी और उसकी ओमेगा विजय 2025 में उसका खुला गठबंधन थी। उसके रूढ़िवादी कलीसियाओं के साथ संघर्षों का भी चित्रण 1945 की प्रारंभिक विजय से लेकर पाइनियम में अंतिम विजय तक किया गया है।
पॉम्पी 1985 के साथ मेल खाता है और पूर्व तथा सुंदर देश पर उसकी दो विजयों, जैसा कि दानियल अध्याय 8 पद 9 में उन्हें निरूपित करता है, पापाध्यक्षीय सत्ता की पूर्व सोवियत संघ पर आध्यात्मिक और राजनीतिक विजय का तथा उसके साथ घोषित प्रोटेस्टेंटवाद के महिमामय देश पर आध्यात्मिक विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं। जूलियस सीजर राफिया में पराजित होने वाला है, जैसा कि एंटियोकस तृतीय पराजित हुआ था और जैसा कि ज़ेलेंस्की भी होगा। पद 17-19 तक का विषय जूलियस है और फिर ऑगस्टस सीजर कर लगाने वाले के रूप में खड़ा होता है। क्रूस के समय टिबेरियास सीजर राज्य कर रहा है, अथा टिबेरियास पद 16 का रविवार का विधान ठहरता है। ये अगस्तस को पद 15 के पानियम के साथ और पद 11 की राफिया की लड़ाई को जूलियस के साथ संरेखित करता है। पानियम की लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध है, जो पद 16 के रविवार विधि से ठीक पहले आरंभ होता है, परंतु फिर एक्टियम की लड़ाई में रूपांतरित हो जाता है। पानियम स्थलीय लड़ाई थी, संयुक्त राज्य, और एक्टियम समुद्री लड़ाई थी, संसार। अगस्तस को 4 रोमी शासकों की पंक्ति में पानियम पर निरूपित किया गया है और वो एक्टियम में वास्तविक नेता था। पानियम पर अंतियोकस ने मिस्र के साथ व्यवहार किया, जो रोम के साथ संबद्ध था, और एक्टियम पर अगस्तस ने मिस्र क्लियोपेट्रा के साथ, जो रोम मार्क एंटनी के साथ संबद्ध था, व्यवहार किया। इसका अर्थ है कि पोम्पेई 1990 तक पद 40 का प्रतिनिधित्व करता है और तिबेरियस पद 41 की रविवार विधि का प्रतिनिधित्व करता है। जूलियस सीजर दो नहीं, जैसा यूक्रेनी युद्ध आरंभ हुआ, जैसा कि 1717 ईसा पूर्व की राफिया की लड़ाई द्वारा प्रतिरूपित किया गया है। ये दर्शाता है कि 17-22 तक की आयतें 1989 से आरंभ होकर रविवार के कानून पर समाप्त होती है और इस प्रकार वे उस इतिहास को निरूपित करती हैं जो आयत 40 के गुप्त इतिहास के साथ संगत है। मक्काबियों की भविष्यवाणी रेखा भी इसी गुप्त इतिहास के साथ संगत है। रोमी शासकों की रेखा आधुनिक रोम प्रकाशित वाक्य 16 का पशु की पहचान कराती है और मक्काबियों की रेखा महिमामय देश प्रकाशित वाक्य 16 का झूठा नबी का वर्णन करती है। 3 युद्धों की रेखा दक्षिण के राजा प्रकाशित वाक्य 16 का अजगर पर विजय की पहचान कराती है। वे 3 रेखाएं उन 3 शक्तियों का निरूपण करती हैं जो संसार को हरमगिद्दोन तक ले जाती हैं, और पद 40 में वे इस प्रकार प्रतीकित है: दक्षिण का राजा अजगर, उत्तर का राजा पशु, और रथ घुड़सवार तथा जहाज झूठा भविष्यद्वक्ता। पद 10-23 तक की वे 3 रेखाएं पद 40 के गुप्त इतिहास में उन्हीं 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वे न कुछ अधिक है न कुछ कम, वरन पद 40 के प्रकट इतिहास में निरूपित उन 3 विषयों का सतत चित्रण मात्र है।
पद एक
जार सन 1989 में अंत का समय की पहचान करते हैं तथा उसी प्रारंभ बिंदु से संयुक्त राज्य अमेरिका के 8 राष्ट्रपतियों की भी, और अंततः कहीं अधिक समृद्ध 8वें तथा अंतिम राष्ट्रपति पर ये क्रम समाप्त होता है। पद जार में वो राजा विश्व का राजा बन जाता है, जैसा कि सिकंदर महान, राजा अहाब, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 के 10 राजा, भजन संहिता 88 के 10 गोत्र, और उत्पत्ति 15:18 के 21 में अब्राम के साथ परमेश्वर की वाचा के सर्वप्रथम चरण में विश्व के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किए गए 10 राष्ट्रों द्वारा निरूपित है। पद 1-4 1989 से लेकर पद 41 में रविवार के कानून पर होने वाले त्रिविध संघ तक के इतिहास का निरूपण करते हैं, और इस कारण वे 4 रोमी शासकों, मक्काबियों की रेखा तथा पद 10-15 तक की उन 3 लड़ाइयों के साथ मेल खाते हैं जो मिलकर पद 40 के गुप्त इतिहास का निर्माण करती है। पद 5-9 तक एक भविष्यवाणात्मक रेखा प्रस्तुत करते हैं जो 538 से अछल्लपैठी से 79 नावे तक के इतिहास का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करती है, और पद 40 में अंत के समय के महत्व को समझने हेतु ऐतिहासिक तथा भविष्यवाणात्मक तर्क प्रदान करती है।
वही तर्क पद 10 को पद 5 से 9 के इतिहास के प्रतिशोध के रूप में व्याख्यायित करता है और ऐसा करते हुए 1989 की तार्किकता को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है कि दानियल 11 के पद 1 से 23 तक 5 भविष्यवाणात्मक रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पद 40 के गुप्त इतिहास के साथ संरेखित है। प्रथम 4 पद ट्रंप जो 7 में से है ऐसा 8वां राष्ट्रपति के विषय में है जो प्रकाशित वाक्य 17 के 7वें राज्य में 10 राजाओं का राजा ठहरने के लिए नियत है। 5 से 10 तक के पद 1798 तक और आगे 1979 तक ले जाने वाले इतिहास को चिन्हित करते हैं। यही पद 40 का इतिहास है। 10 से 15 तक के पद 1979 से आरंभ होने वाले 3 प्रतिनिधि युद्धों के एक इतिहास को चिन्हित करते हैं। दूसरा 2014 में आरंभ हुआ, तब 2015 में सबसे धनी राष्ट्रपति उठ खड़ा हुआ, वो सबसे धनी राष्ट्रपति 2020 में वध कर दिया गया और 2022 में राफिया का युद्ध तीव्र हो गया और फिर 2024 में वो सबसे धनी राष्ट्रपति पुनः लौट आया और 2025 में पशु का प्रधान और पशु की प्रतिमा का प्रधान दोनों का शपथ ग्रहण हुआ। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।